ओम शांति। सभी भाई बहने, आदरणीय शीला दीदी जी का ताली बजा कर खूब अभिनंदन करेंगे। आज आप सबको साकार बाबा से मिलन कराने, साकार बाबा के मम्मा बाबा के पालना में पले हुए आप 1962 में इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और मम्मा के साथ भी पंजाब में रहे, बाबा के साथ भी रहे और लौकिक में आप टीचर की जॉब आपकी लग रही थी तो वो आपने की नहीं और भिन्न भिन्न स्थानों पर बहुत सेवाएं करते हुए पंजाब के कई स्थानों पर आप रहे। प्रेजेंट टाइम आप कई वर्षों से हिमाचल मंडी में जितने भी सेवा केंद्र हैं उनके आप बहुत कुशल संचालिका हैं। ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के आप प्रमुख दीदी हैं हमारे और पंजाब जोन की एग्जेक्टिव कमेटी और वर्किंग कमेटी दोनों के आप मेंबर हैं और आपकी ये ईश्वरीय सेवाओं की एक बहुत लंबी यात्रा है और साकार बाबा मम्मा के अनुभव सुनने की सबके अंदर एक बहुत होता है कि हमें पता चले बाबा कैसे थे, मम्मा कैसे थे। जब सुनते हैं तो ये एक बहुत भाई बहनों के अंदर एक बहुत ही लालसा होती है। तो आज आदरणीय शीला दीदी जी, आपका वैसे भी बहुत स्वभाव स्वीट और बहुत शांति का है तो इसलिए आप सबके लिए क्या लेके आए हैं गिफ्ट, आपने अनुभव की हिमाचल में ठंडी होती है तो गर्मी के मौसम में भी यहाँ बहुत अच्छी ठंडी शीतल लहरें हैं। तो अभी दीदी अपने बहुत सुंदर सुंदर मम्मा के साथ के अनुभव, बाबा के साथ के अनुभव और अपने जीवन के अनुभवों से आपको लाभान्वित करेंगे। तो हम दीदी जी से आग्रह करते हैं वो आपके बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों से भरपूर करें और ऐसे स्नेह के सागर बाबा मम्मा के साथ आपका भी मिलन करा दें। आदरणीय शीला दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये ओम शांति शब्द इतना प्यारा है जो हमें शांति भी देता है, सुख भी देता है और परमात्म मिलन के लिए हमें जैसे आत्मिक स्थिति में टिकाने का ये बहुत सुंदर मंत्र है। और इस मंत्र को जब हम पक्का कर लेते हैं बार बार ओम शांति का मंत्र, तो क्या होता है कि हमारे अंदर वो शांति की शक्ति आनी शुरू हो जाती है और हम सबके साथ फिर उसी रीति से व्यवहार भी कर सकते हैं। तो आज मैं अपना अनुभव सुनाऊंगी। वैसे तो आपको बता दिया वो 1962 में मैं अभी 9th क्लास में पढ़ती थी। उस समय पूजे क्लासरूम में बैठी थी तो वहां पर एक बहन और थी, वो आश्रम जाती थी, तो उनके घर के साथ ही आश्रम था, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा दो तीन शब्द सुनाए, आत्मा का परिचय दिया। और जैसे आत्मा का परिचय मुझे मिला तो मुझे ऐसे लगा कि बस मैं यही तो चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही मैं अपने पिताजी को, 4 साल की थी, मुझे याद है कि मैं उनको कहा करती थी कि मैंने शादी नहीं करनी है, मेरी शादी मत करना। हालांकि मुझे पता भी नहीं था कुछ भी, लेकिन अंदर से ये आवाज निकलती थी तो मैं ऐसा कहती थी। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा मैं नहीं शादी करूंगा, लेकिन अगर आप मान लो कुछ अच्छा कार्य करेगी और फिर वापस आएगी तो फिर तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो लौकिक पिता से भी बहुत प्यार था, तो उसके कारण से फिर ऐसा ही कहा कि नहीं मैं नहीं ऐसा कुछ करूंगी और ना ही आपके पास वापस आऊंगी, आप ठीक रहना, बस मुझे यही खुशी होगी। तो इस प्रकार से बचपन से ही मेरी ये इच्छा थी और अंदर से एक आवाज आती थी कि मुझे भगवान से मिलना है, मैंने भगवान से मिलना है और मिल करके मैंने कुछ अच्छी सेवाएं करनी है। तो अचानक ऐसा ही हो गया, जैसे समय आता गया वैसे वैसे वो परिवर्तन होता गया। और हम कहीं भी किसी जगह पर भी कोई शादी होती, कुछ होता, खाना खाने जाते, हम नहीं खाते थे, पता नहीं क्या होता था। पिताजी कहते थे बस मैं तो यहाँ नहीं खाना खाऊंगा, मैं घर जाके खाऊंगा। तो हम तीन बहनें थी, हम तीनों बहनें पिताजी की उंगली पकड़ती और फटाफट उनके साथ ही चल पड़ती, चाहे हमें 1 बजे खाना मिले रात को, चाहे 2 बजे मिले, हम बैठे रहते थे और देखते रहते थे पिताजी क्या क्या बना रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब बाबा ने जैसे ना जाने क्या पार्ट था, और सचमुच इतना बड़ा वो स्थान है, गांव भी समझो, फिर शहर भी था, सब कुछ था, लेकिन उसमें से एक मैं ही आत्मा निकली हूँ वहां से, काफी बड़े एरिए में से एक ही आत्मा निकली और उसके बाद कोई भी नहीं निकला है। तो शायद बाबा ने मुझे सब तरह से बचा करके रखा और बहुत अच्छी तरह से, माना घर में रहते हुए भी मतलब अच्छी तरह से पालना हुई और पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो गई, सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद जब ज्ञान मिला तो आते ही कुछ समय के 2-4 दिन के बाद ही आश्रम में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो बहन वहाँ नहीं रहती थी, लेकिन जब पता लगा, चंद्रमणि दीदी थे उनको पता लगा कि 6-7 कन्याएं नदौड़ में ज्ञान में निकली हैं तो मैं जा करके देखूं। तो अचल दीदी कभी पहाड़ में गए नहीं थे, वो भी पहली बार वहां पर नदौन में आए और चंद्रमणि दीदी भी आए और 3-4 दिन रहे। तो मैं ही खाना बनाया करती थी, सारा कुछ उनके मतलब जो सेवा करनी होती थी मैं किया करती थी। तो फिर दीदी ने कहा कि इसको मैं साथ ही ले जाऊंगी, हाँ जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं साथ ले जाऊंगी। तो मुझे तो और खुशी चढ़ गई और ज्ञान जैसे मिला तो एकदम से जो खुशी आई, और उसके बाद दीदी के साथ मिलन हुआ तो और भी अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी बीच में 1964 में मम्मा से मिलना हुआ। और मम्मा जलंधर में आए थे, लास्ट टूर था शायद, और जलंधर में आए, 3 दिन रहे थे और 3 दिन रह करके मम्मा की क्लासेज भी सुनी। तो क्लासेज तो इतनी याद नहीं है क्योंकि उतना मतलब समझ भी कम ही थी उस समय पर। तो पर लेकिन जो मम्मा का प्यार मिला, मम्मा सबको गोद में लेती थी और बहुत प्यार से समझाती थी, और मेरे को तो यही कहा कि बस एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी रीति से चलती रहेगी तो सब जगह पर आपकी जीत होगी। तो एक वरदान जैसा मिल गया और वरदान मिला तो उसके बाद फिर सचमुच ही सब तरफ से मुझे सहयोग मिलता रहा। और फिर मेरी मैट्रिक तो पूरी कर ली थी, उसके बाद बाबा का पत्र आया। हर मास में बाबा का पत्र आता था सारी क्लास वालों के लिए। तो उस समय पर 20-25 की क्लास थी और हर बार बाबा का पत्र आता था, तो बाबा कोई ना कोई डायरेक्शन देते थे बच्चों को कि किस प्रकार से इस सेवा करनी है, क्या करना है। वो बाबा हमारे पत्र लिखते थे, तो सभी का एक एक का नाम, जो 20-25 थे उन सब का पत्र में नाम होता था और नाम सहित सबको याद प्यार बाबा देते थे। तो इस प्रकार से बाबा की पालना मतलब मिलती रही, और ऐसे ही पालना मिलते मिलते फिर उसके बाद बाबा ने मेरे को पत्र में लिखा कि अब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैट्रिक हो गई है, तो इसको कोई ना कोई ट्रेनिंग करा दो। तो फिर मैं उस समय पर टीचर ट्रेनिंग का शुरुआत ही हुई थी और फिर मेरा सिलेक्शन हो गई 2-3 जगह पर, और मैं फिर नदौन में ही ट्रेनिंग की। और जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था उस दिन मैं बाबा मिलन के लिए गई। उससे पहले साकार में जाकर के सामने बाबा से नहीं मिली थी, लेकिन पत्र के द्वारा रोज जो भी एक मास में आता था उसमें बाबा के सब डायरेक्शन मिलते रहते थे। फिर इसी तरह से फिर जब बाबा से मिलन के लिए गई तो पहले तो बाबा ने कहा ट्रेनिंग कराओ। फिर जब मैं गई तो बाबा ने कहा, जैसे मैं बाबा के दरवाजे के पास पहुंची तो बाबा ने कहा, बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी। मैं सबसे पहले तैयार होकर के बाबा के कमरे में चली गई तो बाबा बैठे थे और एक भाई और बैठे थे। तो बाबा ने सीधा मेरे से पूछा, बच्चे नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी? मैंने कहा, नहीं बाबा मैं नहीं करूंगी नौकरी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जहां बाबा का बेड लगा हुआ है वहां पर पहुंची तो फिर बोला, बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी? फिर मैंने कहा, नहीं बाबा मैं नहीं करूंगी नौकरी। फिर उसके बाद बाबा के पास बैठ गई तो बाबा ने गोद में लेने से पहले यही पूछा कि बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी? तो इस प्रकार से बाबा ने मुझे बहुत पक्का किया, अच्छी तरह से पक्का करके कि क्या करना है इसने, वो अपने आप बोल देगी। लेकिन मैंने कहा, नहीं मैं नौकरी नहीं करूंगी, बस मैंने यही सेवा करनी है, इसी सेवा में मैं अपना जीवन लगाना है। और जब दीदी मतलब चंद्रमणि दीदी जब आए थे ना दौड़ में, उसी टाइम पत्र लिखवा लिया था पिताजी से। पिताजी को मतलब बुलाया घर से और उनको कहा कि भाई आप दीदी ने कहा कि पत्र लिखा लेते हैं इनसे, तो उन्होंने साइन कर दिए, पत्र लिख करके दे दिया कि ठीक है जैसा ये चाहती है वैसा ये करे, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो पत्र मिल गया हुआ था। तो फिर बाबा के पास गए तो वो तो पत्र पहले ही ले लिया हुआ था, तो बस बाबा ने यही पूछा। बस फिर उसके बाद मैं अमृतसर आ गई। तो मैं एक छोटा सा वो सुनाती हूँ कि बाबा कितने बाबा बच्चों की छोटे से कार्य के लिए भी बाबा कितना प्रेज करते थे, कितना प्यार करते थे। तो जब मैं गई थी तो उस समय पर बाबा क्या मुरली में आया था कि कोई ऐसा टेंट तैयार करें, क्योंकि कोई जगह नहीं मिलती थी प्रदर्शनी लगाने के लिए, तो ऐसा अपना ही कोई टेंट तैयार करें जहाँ पर अच्छी तरह से रहने के लिए भी हो, प्रदर्शनी के लगाने के लिए भी, बड़ा सारा बनाएं। और बना करके फिर उसके बाद भी वहाँ पर खड़ा करके वहाँ सब कुछ मतलब स्नान करने के लिए उसमें बाथरूम भी बने होने चाहिए, माना बहुत बड़ा सारा वो बता करके माना मुरली में आया था। तो फिर जो हमारे को पढ़ाते थे एडमिनिस्ट्रेशन वो भी क्लास करते थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको बना करके मतलब सिखाऊंगी, मैं बनाना आपने सिखाऊंगी मैं सारा ही। फिर मैं एक इतना सा मॉडल बना करके ले गई थी, तो मॉडल बना करके ले गई तो बाबा बैठे थे। मैंने कहा बाबा आपने कहा था टेंट बनाने के लिए, तो मैं मॉडल बना के लाई हूं इतना सा। तो बाबा कहते दिखाओ मुझे। तो बाहर आंगन जो था ना, बाहर मतलब बाबा के कमरे के बाहर जो जगह थी वो मतलब कच्चा ही था, मिट्टी थी उसमें। तो बाबा ने कहा मुझे दिखाओ कैसा बनाया। तो बाबा ऐसे बैठ गए, नीचे ही बैठ गए, और मैं भी इधर बैठ गई और मैंने वो लगा करके दिखाया। तो बाबा ने इतने प्यार से देखा और इतना प्यार, मुझे भी बहुत प्यार किया, ये तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो पूछा कि तू बना सकती है? मैं कहा हाँ बाबा मैं बना सकती हूँ। और सचमुच ही मुझे ना सिलाई का काम अच्छी तरह से आता था उस समय पर। तो मैंने कहा हाँ बाबा मैं बना सकती हूँ। बाबा कहते अच्छा कल कपड़ा मंगवाएंगे, मतलब सारा उसका सामान मंगवाएंगे, फिर तूने सिलाई करना। फिर उसके बाद मतलब मैंने कहा हाँ बाबा मैं करूँगी जरूर। तो फिर तो दूसरे दिन बाबा ने कहा कि अभी तो नहीं बन सकता है। फिर चंद्रमणि दीदी कहते मेरे को कहा भाई यहीं रहेगी ये, तो फिर बना देंगे। और चंद्रमणि दीदी ने कहा बाबा अमर से मैं करने थोड़ी कम हो गई हैं, तो इसको मेरे पास ही भेज दो। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, फिर आपके पास जाएगी। फिर मैं अमृतसर में दीदी के पास 3 साल रही। तो उस बीच में थोड़ी सी परिस्थिति आई, लेकिन जैसे बाबा कहते अगर हमारा निश्चय पक्का है, बाबा के साथ प्यार है, तो बाबा हमारी बहुत मदद करते हैं और मदद करके हमें उस परिस्थिति से भी निकाल देते हैं। तो मैं छोटी सी थी 12 साल की, तो मेरी सगाई कर दी थी, परिस्थिति क्या आई सगाई कर दी थी। फिर मैं एक दिन के लिए, तो बीच में जो माताजी थे जिनके घर में आश्रम था, वो माताजी नदौन से अमृतसर आए और कहते कि इसका रिजल्ट आ गया है दीदी, इसको भेज दो और इसको भी नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैं तो जाना नहीं है, मैं नौकरी तो मैं करनी नहीं है। फिर भी मतलब दीदी बड़ा माता ने बोला बार बार, दीदी ने कहा चलो इसका भगवती का भी दिल रख लो और आप चली जाओ। और मैं चली आई माता के साथ, खूब सारी रात रोती रही, मैंने जाना नहीं था। लेकिन फिर सवेरा जब हुआ तो फिर दीदी ने कहा कि आप जाके आओ, कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद वापस आ जाना। बस मैं जैसे घर गई, मतलब घर नहीं गई, गई तो मैं आश्रम में ही, और फिर दूसरे तीसरे दिन तो मैंने वापस आना था। तो मैंने सोचा घर जा आती हूँ, माता पिता से मिल लेती हूँ, लेकिन माता पिता को इतने दिन हो गए 3-4 मास, तो उनको मिल के फिर आ जाती हूँ। तो मैं सवेरे जाती थी, शाम को फिर वापस आ जाती थी। तो उन्होंने कहा, फिर मैं गई तो मेरे को ऐसे संकल्प आया कि कहीं वो लोग ना आ जाए, क्योंकि वो कहते थे भी जब तक ट्रेनिंग है ट्रेनिंग कर ले, उसके बाद हम शादी करेंगे। बस फिर उसके बाद वही बात हुई, जैसे मैंने सोचा वैसे जब मैं वहां पहुंची वापस घर से, तो वो लोग बैठे हुए आकर के बात करने के लिए कि अभी हम तो ले जाएंगे और ऐसे शादी का प्रोग्राम बनाएंगे। फिर बस मैं उनको अच्छी तरह से खाना पीना खिलाया, क्लास भी कराई, मुरली सुनाई, सब कुछ किया। उन्होंने तो क्या मुरली सुननी थी, पर बैठे वहाँ क्लासरूम में। उसके बाद फिर खाना पीना खा के बैठ गए, मैं तो सो गई, लेकिन बहन जो मेरी, मेरे से बड़ी बहन थी, वो भी ज्ञान में चलती थी, तो वो उनके पास बैठी बातचीत करने के लिए। तो मैं पहले ही उनको बोलती थी कि आप अपने लड़के की शादी कर लो, मैंने शादी नहीं करनी है, वो जब आते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, काफी देर तक 1 बजे तक बैठे रहे। 1 बजे मेरी नींद खुली, फिर मैं अंदर आई, मैंने कहा देखो मैंने एक भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लिया है, मैं एक भगवान से एक उन्हीं को पति परमेश्वर मान लिया है, अब मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, वो एकदम जैसे, वो तो बहुत बड़े जोर जोर से बोलने लगे। मैंने कहा लड़ने की तो कोई बात नहीं है, अब ये मेरा फैसला, मैं नहीं शादी करूंगी, आप चाहे कुछ भी करना। और मैं वापस वहां से उठ के चली गई और वो लोग भी सो गए। और सवेरे 5 बजे उठे और उठ करके बस अड्डे पर जाके बैठ गए। बस अड्डे पर जाके बैठ गए तो उन्होंने सोचा ये जाएंगे तो हमने यहां से ही साथ ले जाने अपने घर, बस में बिठा कर बस में बैठेंगे तो हम भी चढ़ेंगे और उनको वहीं सार सीधा ले जाएंगे। लेकिन जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोक गएगा आंधी और तूफान। तो उनकी नहीं कोई भी चल सकी, तो मैं तो नहीं गई, लेकिन वो मेरी बहन जाती थी ड्यूटी पर, हॉस्पिटल थोड़ा दूर था, बस अड्डे से होकर के जाया करती थी। जब देखा उन्होंने तो अकेली जा रही है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, वो तगाई नहीं छोटी, अब क्या करना। फिर उसके बाद उन्होंने बहन को भेजा, मेरी बहन के मतलब ससुराल में थी ना वो सगाई की हुई, तो बहन को भेजा पे आप ले आओ उसको जा करके, अब ये तो चली गई ड्यूटी पर, हम इसको ऐसे ले जाएंगे। मैं भी स्कूल जा रही थी और बहन आई और बहन आकर के कहती कि आप बहुत रोई, इतना रोई उसने मेरे को भी रुला दिया। अब बहन का तरस भी आए भी पता नहीं वो मारेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके साथ। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मनाया, मैं क्या आप चले जाओ हम दोपहर को आएंगे दोनों ही इकट्ठे। बस फिर उसके बाद वो चले गए, उन्होंने जिस बस में हमने जाना था वो बस देखी, वहाँ तो निकले, हम तो नहीं थे भी उसमें। फिर वो अपने घर चले गए, माना हमारे घर भी नहीं गए फैसला करने के लिए। तो इस प्रकार से बाबा ने मेरा छुटकारा करा दिया। और मुझे फिर उसके बाद क्या हुआ, माना दीदी ने कितनी संभाल की, तो उन्होंने कहा था कि जहां भी मिलेगी हम उठा करके इसको ले जाएंगे। तो दीदी ने 2 साल मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, गेट के बाहर इतनी संभाल की भाई नहीं कहीं इसको लेना चाहे। माना कहने का भाव है कि दीदी ने इतना वो रखा कि नहीं बाहर नहीं निकलना, गेट के बाहर नहीं जाना। तो 2 साल तक मैं अंदर ही रही, हाँ और सब काम करती थी लेकिन अंदर ही रही, बाहर कहीं नहीं गई, ना घर गई ना कहीं गई। तो इस प्रकार से वो उससे छुटकारा मिल गया और फिर मतलब फ्री हो गई। तो इस प्रकार से ये सारा चलता रहा। उसके बाद फिर अमृतसर में दीदी के पास ही रहे और बहुत अच्छा समय निकला। और उसके बाद 3 साल के बाद फिर मैं चंडीगढ़ गई, 3 साल चंडीगढ़ रही और चंडीगढ़ अचल दीदी के पास उनकी पालना ली। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें पक्का किया, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान की, हर बात को समझा करके जीवन में कैसे चलना है सब बातें अच्छी तरह से, क्योंकि दीदी ट्रेनिंग दिया करते थे बहनों को, चंद्रमणि दीदी उनके पास बाबा भेजा करते थे कि उनको ट्रेनिंग मिले, तो ऐसे ट्रेनिंग दी। और उसके बाद फिर हम उसमें मतलब फिर अमृतसर जब चंडीगढ़ में थी, जैसे 3 साल हुए वैसे ही मंडी से एक भाई आए, उन्होंने कहा दीदी वहाँ पर सेंटर खुला है, बहुत सारे भाई बहन आते हैं, तो हमारे को एक बहन की ज़रूरत है और बहन भी हमें ऐसी मिले जो उधर की भाषा को भी समझ सके, क्योंकि मंडी की भाषा थोड़ी सी आसान तो है लेकिन थोड़ी ऐसी है जो जल्दी समझ नहीं आती है। तो फिर मेरे को उन्होंने कहा भाई इसको भेज दो। फिर दीदी ने मुझे वहाँ भेजा और अपने आप छोड़ने गए, अच्छी तरह से बातचीत करके अच्छे ढंग से, जैसे मतलब लड़की को भेजते तो कैसे भेजते हैं, समझा के सबको बता के मेरे से लेक्चर भी करवाया, कहते भाई आप यहाँ पर लेक्चर भी करो जिससे कि इनको पता पड़े कि हाँ ये अच्छी तरह से यहाँ पर संभाल सकती है। इस प्रकार से मेरी जीवन की ये शुरुआत हुई और बहुत अच्छा सब कुछ बीता। उसके बाद तो कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई और यज्ञ में भी बड़ों की बहुत पालना मिली। प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी जी और दादियाँ जितनी भी थी उन सब के साथ भी मिलना हुआ, उनकी भी सबकी पालना मिली। तो इस प्रकार से मेरा जीवन बीता। और जब हमारा निश्चय पक्का है तो बाबा हर घड़ी हर कदम पर हमारी बहुत मदद करते हैं। हम बाबा ने इस प्रकार से देखो 90 साल बीत गए हैं, बार बार संकल्प आ रहा था कि देखो 90 सालों में ये यज्ञ इसी तरह से चलता जा रहा है। बाबा कहते थे बच्चे बहुत बड़े बड़े वो मतलब पतीले चढ़ेंगे, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा भोजन बनेगा, बहुत सारे बाबा के बच्चे आएंगे और यहाँ पर ये भोजन बनता रहेगा। ऐसे लगातार ये कार्य जो है बाबा का चलता रहेगा। तो देखो 90 साल हो गए तब से लेकर के देख रहे हैं कि कैसे वो बाबा का यज्ञ चलता जा रहा है और हम सब यहाँ इस यज्ञ में बाबा की पालना लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है तो बाबा की एक कमाल है। ये किसका यज्ञ है? ये ब्रह्मा बाबा का, हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं लेकिन यज्ञ किसने रचा है? शिव बाबा ने रचा है। पर शिव बाबा निराकार है ना, इस कारण से ब्रह्मा बाबा का नाम आता है। तो ये शिव बाबा शिव यज्ञ है, ये रुद्र यज्ञ है। इसमें कहते ना कि हड्डी हड्डी हमें इसमें समर्पित करनी है, क्योंकि जितना हम इसमें सच्चे दिल से सच्चे प्यार से बाबा की सेवा करते हैं या यज्ञ की सेवा करते हैं उतना ही हम आत्माओं को बल मिलता है। मैंने बहुत बार देखा है जो बहुत गरीब से गरीबी बाबा के बच्चे आए, लेकिन जैसे उन्होंने अपना थोड़ा सा चाहे एक आना भी बाबा के घर में लगाया तो उससे भी उनके घर की घर में बरकत बढ़ गई और वो भी अच्छी तरह से माना अच्छी तरह से रहने लगे। क्योंकि देखा है पहले बहुत गरीबी होती थी, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था, जमीन भी नहीं इतनी होती थी, लेकिन फिर भी सुख था, शांति थी, प्यार से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे पैर मतलब पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, अभिमान आने लगा। सबसे पहला क्या है? अभिमान आया। और अभिमान आने के कारण से एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे बातें होने लगी, जिसके कारण से मनुष्य के अंदर और भी अशांति बढ़ती गई। और आज तो आप देख रहे हैं कि सारे संसार में जहां भी जाओ सब दौड़ रहे हैं, सबके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे को देख के कोई राजी नहीं है, भाई भाई का भी आपस में कोई संबंध नहीं रहा है। ऐसी स्थिति जब दुनिया की बन जाती है तो उस पिता परमात्मा ने जो आकर के हम सब आत्माओं को ज्ञान दे करके समझ दे करके हमारे जीवन को क्या बनाते हैं? पवित्र बनाते हैं। हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जीने का तरीका क्या है, हम कैसे इस दुनिया में रहते हुए भी खुश रह सकते हैं, शांति कैसे हमें मिल सकती है, उसका बाबा ने आकर के हमको ज्ञान दिया। तो हम सब बाबा के बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं जिनको बाबा का ज्ञान मिला है। बाबा ने कहां कहां से चुन चुन करके हम सबको अपना बनाया है और अपना बना करके बाबा बार बार कहते हैं मेरे पाए प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, इस प्रकार से हमारी पालना कर रही है। बच्चे बच्चे कह करके हमें बुराई से छुड़ाते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं। और हमें भी बाबा यही कहते बच्चे आपको भी क्या करना है, ना किसी को दुख देना है ना किसी से दुख लेना है। क्योंकि हमारा पिता कौन है, दुख करता सुख करता है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाला है। तो जो बाप है तो हम सब बच्चे भी वैसे ही बाबा की तरह बने, बाबा की तरह हमारे दिल के अंदर हर एक आत्मा के प्रति एक आत्मिक भाव पैदा हो जाए। और जितना हमारा आत्मिक भाव होगा उतना ही आत्माएं हमारे से अच्छी तरह से संतुष्ट भी होंगी, और उस आत्मिक भाव रखने से हमारे अंदर एक रहम भी पैदा होगा। नहीं तो हम क्या देखते थे आज तक, दूसरों की बुराई देखते थे, दूसरों का परचिंतन करते थे। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे परचिंतन क्या है, पतन की जड़ है। तो इसलिए किसी का भी परचिंतन नहीं करना, सब आत्माओं का पार्ट अपना अपना है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट जो है वो बजा रही है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है वो अपना पार्ट बजा रही है। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा फर्ज है जो बाबा सिखाए उसके ऊपर चलना, बाबा की आज्ञाओं का पालन करना। बाबा ने आज मुझे क्या आज्ञा दी है, आज बाबा ने मुझे क्या शिक्षा दी, बाबा ने आज मेरे लिए क्या बोला, जो भी बाबा की मुरली के शब्द आते हैं उनको अपने दिल से लगाना है। दिल से कैसे लगाना, दिल में स्वीकार करना है कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या बोला है। क्योंकि हम सब बच्चों के लिए मुरली चलती है, बाबा सब बच्चों के लिए मुरली चलाते हैं ना, तो इसलिए जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं, मुरली हमारी एक जान है, इस ब्राह्मण जीवन का एक भोजन है। अगर मुरली नहीं मिले तो हम इस ज्ञान में भी नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए बाबा की मुरली तब से ही लेकर के चलती जा रही है, यज्ञ भी चलता जा रहा है और मुरली भी रोज क्या होती है, पढ़ते हैं ना, रोज क्लास लगती है, एक दिन भी मिस नहीं होती। क्यों नहीं मिस होती, क्योंकि बाबा की ये जो पढ़ाई है वो हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए, जो बाबा बोले वो हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए। जैसे बाबा कहते आपने किसको दुख नहीं देना, अभिमान में नहीं आना, आत्म अभिमानी बनना। तो वो शिक्षा जब हम बाबा की अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसके द्वारा हमारे संस्कार भी परिवर्तन होते हैं और हमारे जीवन के अंदर एक ज्ञान अंदर में जब रहता है तो हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाबा के जब से बने हैं, बाबा का बहुत प्यार मिलता रहा, बहुत सारी बाबा की शिक्षाएं जो मिली उनको धारण करके आगे हम दूसरों को सुनाते और उनके जीवन में भी उन शिक्षाओं को देने की, क्योंकि बाबा ने हमें देवता बनाना है, हाँ देवता बनाना है ना, तो देवता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देवता बाबा बना रहे हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण आने चाहिए। तो बाबा हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण भर रहे हैं, रोज रोज बता रहे हैं। तो इस देह भान को छोड़ करके अपने अंदर उन गुणों को हम धारण करते जाएं तो क्या होगा, हमारे जीवन के अंदर वो दैवी गुण आते जाएंगे और फिर इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, वही राम राज्य आ जाएगा और उस राम राज्य में होंगे कौन, हम ही होंगे, हम उसके मालिक बन जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरा छोटा सा अनुभव है तो बहुत सारा सारी जिंदगी का है, 7 साल हो गए हैं बाबा के यज्ञ में आए हुए, तब से लेकर के बाबा के घर में रह रहे हैं और बाबा की शिक्षा ले रहे हैं और उस शिक्षा को जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया, दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।